नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आतंकवाद और साइबर अपराध से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। मध्य गजा के एक स्कूल पर इसराइली हमले में 30 लोग मारे गए। T20 क्रिकेट में श्रीलंका के पहले कल में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची, वहीं 10 मीटर मिक्स्ड टीम एयर फाइट राइफल स्पर्धा में भारतीय चुनौती समाप्त। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रौद्योगिकी और भू राजनीति तथा अवसरों के लिए परिवर्तन का दर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने 100 वर्ष में एक बार आने वाली महामारी पर विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपनों को सभी राज्यों के सम्मिलित प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और रोजगार आधारित जानकारी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, आपराधिक न्याय प्रणाली जैसे सुधारों का उपयोग भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में युगांतकारी परिवर्तन लाने के लिए किया जाना चाहिए। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और विशेष आमंत्रित सदस्य तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा सदस्य शामिल थे। शाम को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर बल दिया। इससे विशेष रूप से कम सफल राज्यों तक निवेश पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सभी जिलों को विकास का संचालक बनाना चाहते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BBR सुब्रमण्यम ने कहा कि इस बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भागीदारी की, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो इस मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत बनाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करना है। विजयवाड़ा में आज 2024-25 के बजट पर मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने कहा कि कोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारा और अन्य पहलों की वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष आवंटन किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी वैश्विक कल्याण और वैश्विक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। आज वियतनाम के लाओ पीडीआर में 31वें आसियान क्षेत्रीय मंच में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार और वैश्वीकरण की परस्पर निर्भरता का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि कोविड संघर्ष और जलवायु परिवर्तन वर्तमान दुर्दशा को उजागर करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल आर्थिक सहयोग, राजनीति, प्रौद्योगिकी और संपर्क के माध्यम से ही समाधान निकल सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने, आतंकी ठिकानों तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवाद वित्त पोषण नेटवर्क को नष्ट करने और साइबर अपराध से निपटने में मजबूत होना चाहिए। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत आसियान एकता, केंद्रीयता और हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल और AOIP के बीच तालमेल का उल्लेख किया। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि देश के मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थानों द्वारा समुद्री कछुओं को बचाने वाला एक विशेष जाल विकसित किया गया है तथा इसकी प्रभावशीलता शीघ्र ही प्रदर्शित की जाएगी। कोची में आज मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उनकी ये टिप्पणी अमरीका द्वारा भारतीय झींगा पर लगाए गए प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में आई है। ये प्रतिबंध अनियमित मछली पकड़ने की प्रथाओं के कारण लगाया गया है, जिसके कारण समुद्री कछुए जाल में फंसकर घायल हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगने वाले विशेष लोक अदालत सप्ताह में भागीदारी के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि विवाह और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावेदारी, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, सेवा और श्रम मुद्दों सहित निपटाए जाने वाले मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत में उठाया जाएगा।
हमारी न्याय प्रणाली अब तकनीकी प्रगति का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी। यह तरीका न केवल तेज और पारदर्शी है बल्कि लागत प्रभावी और सुगम भी है। लोक अदालत में भाग लेने से आपको कई लाभ मिलते हैं। इससे आपके विवादों का जल्दी, सरल और कम खर्चीला समाधान होता है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम और लागू करने योग्य होते हैं। इसके अलावा विवाद के निपटारे के बाद आप पहले से जमा की गई अदालत की फीस की वापसी का भी दावा कर सकते हैं।
फिलिस्तीन के विस्थापित और घायल लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इसराइल के हमले के बाद मध्य गजा में 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इस बीच इसराइली सेना ने कहा है कि इस हमले में स्कूल परिसर के भीतर स्थित हमास के निर्देशन और नियंत्रण कक्ष को निशाना बनाया गया था। सेना ने कहा कि इस स्कूल का इस्तेमाल इसराइली सैनिकों पर हमला करने और हथियारों को जमा करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा है कि अध्यक्ष के अलावा संसद के भीतर की गतिविधियों में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नई दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और नामांकित सदस्यों के दिशा निर्देश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि संसद अपनी कार्यप्रणालियों और कार्यवाहियों के मामले में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि सदन और संसद में किसी तरह की कार्यवाही कार्यपालिका या किसी अन्य अधिकारी की समीक्षा से परे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। और अब पेरिस ओलंपिक के समाचार। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन गुयाना के केविन कॉर्डन को हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की और जानकारी के लिए आइए चलते हैं पेरिस में हमारे संवाददाता शिबु जॉर्ज के पास। शिबु, ओलंपिक खेलों के पहले दिन आज भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और कल भारत किन किन खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा?
नवीन, आज भारत के लिए दिन कुछ मिला जुला ही रहा। रोइंग में पुरुषों के सिंगल स्कल्स के पहले हीट में बलराज पवार चौथे स्थान पर रहे, लेकिन बलराज पवार के लिए एक और मौका है रपाशेस में। शूटिंग में भी आज भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम मुकाबले में अर्जुन बबूता और रमिता की जोड़ी छठे स्थान पर रही और संदीप सिंह और इलेवेनल की जोड़ी 12वें स्थान पर रही। इस तरह दोनों ही जोड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में भी सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा क्वालिफाई नहीं कर पाए। सरबजोत सिंह 9वें और अर्जुन सिंह चीमा 18वें स्थान पर रहे। निशानेबाजी से आज एक अच्छी खबर बस मनु बाकर की रही। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु बाकर क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रही और कल वे पदक मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करेंगी। रिदम सांगवान क्वालिफाई नहीं कर पाई, वे 15वें स्थान पर रही। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई ने अपना पहला मैच जीत लिया है। उन्होंने जॉर्डन के जैब अबू को सीधे सेटों में परास्त किया। बैडमिंटन में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो महिलाओं के युगल मुकाबले में आज रात कोर्ट पर उतरेंगी। हॉकी में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और बॉक्सिंग में प्रीति पवार अपनी चुनौती पेश करेंगी। नवीन, कल भी भारत के लिए शूटिंग में पदक की उम्मीद है क्योंकि मनु बाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक दौड़ में बनी हुई है। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन मुकाबले कल खेले जाएंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय अपनी चुनौती पेश करेंगे और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और शरद कमल मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा बॉक्सिंग, तीरंदाजी, तैराकी और रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी जोर आजमाइश करेंगे।
चिबूस जानकारी के लिए धन्यवाद। क्रिकेट में पल्लिकल में भारत और श्रीलंका के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आतंकवाद और साइबर अपराध से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। मध्य गजा के एक स्कूल पर इजरायली हमले में 30 लोग मारे गए और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।